نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة فاتحة آیت نمبر 4 سے آگے تک. ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ دہرائیں گے. 4 میں نے اس لیے بولا کہ بسم اللہ کو الگ کہہ دیا. کئی لوگ اس کو ساتھ ملائیں گے تو اس آیت کا نمبر 5 دیں گے. ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورت کیا کہتی ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ایاک
صرف تیری ہی
نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. وإياك اور صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. پھر دیکھیے، شاید کچھ لوگوں کا شروع میں پارا نہ کھلا ہو. إياك صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت انعام فرمایا تو نے علیہم اوپر ان کے. یہاں ذرا سے رک کے دیکھے گا، اگر آپ پہلی لائن پہ دیکھ رہے ہیں تو لفظ علیہم اکٹھا لکھا ہوا نا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک لفظ ہے، لیکن آپ ذرا نیچے دیکھیے، علیہ میں ایک نفس نکلا علی اور دوسرا نکلا، اصل میں ہم تھا لیکن علی کی وجہ سے ہم ہو گیا. تو عربی زبان کی یہ خوبی ہے، آپ نے اپنے وہ ہاؤ ٹو ٹیک نوٹس میں یہ ریزن پڑھی ہوگی گھر جا کے کہ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ کیا ہے کہ بعض لفظ جو ہیں وہ دیکھنے میں ایک لگتے ہیں لیکن وہ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب ترجمہ آپ اس کا سنائیں گے نا تو کیسے سنائیں گے؟ علی اوپر، ہم ان کے. ٹھیک ہے، اکٹھا سناتے ہیں تو پھر علیہم اوپر ان کے. ٹھیک ہے، غیری نہیں المغضوبی غضب کیے گئے یا غضب کیا گیا علیہم اوپر ان کے. وہ اور لا نہیں یا نہ ولا اور نہ الضالین گمراہوں کا یعنی جو بھٹک گئے. اب یہاں تو نہیں لکھا لیکن آپ خود لکھیے اپنے پارے پہ آمین، کیونکہ صحابہ کرام میں سے قریبی صحابہ کی سند موجود ہے کہ جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد آمین کہتے تھے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جہری نماز ہوتی ہے، یعنی وہ نماز جس میں امام صاحب سورۃ فاتحہ کو اونچی پڑھتے ہیں، تو جو ہی وہ سورۃ فاتحہ پوری کرتے ہیں تو پھر بعد میں آمین کہا جاتا ہے. اس کا معنی لکھانا چاہ رہی ہوں اصل میں آپ کو. آمین کا معنی ہے، آپ پہلے لفظ آمین لکھیے، پارے پہ لکھیں تو بھولے گا نہیں کبھی انشاءاللہ، ایسا ہی ہو. اس کے کئی مختلف معنی ہیں، مثلا ایسا ہی ہو. اسی طرح ہمارا بھی یہی ارادہ ہے. یہ لفظ اصل میں قرآن پاک میں سورت مائدہ کے بالکل شروع میں بھی استعمال ہوا ہے، آمین البیت. حج پہ جانے والوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف یا اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں تو دو معنی ہوتے ہیں. آمین پہلا معنی، مفہوم کیا دیتا ہے؟ استجب لنا، قبول کر لے ہمارا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا اللہ جی اب کر دیں، ایسا ہی ہو. ظاہری بات ہے دعا تو مانگی اس لیے رہے نا کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے، اور اگر اس کا دوسرا معنی لے آمین قصد والے ارادے والے تو کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے نا ہمارا یہی ارادہ ہے، यानी दिल की गहराई से मांग रहे हैं। ऊपरे ऊपरे दिल से नहीं हम कह रहे कि हमें ये मिले वो ना मिले। तो लिहाजा आप आमीन कहते हुए अपने आप को यकीन दिलाया करें कि आप पूरे दिल और इरादे के साथ ये मांग रहे हैं। तो ये था लफ्जी तर्जुमा। आइए ज़रा मिल के याद करते हैं, जैसे कल आपको सिखाया था ना मैंने खुद से याद करके। अब क्या हम करेंगे आज, ये आपकी एक हेड स्टार्ट, एक फ़ायदा हुआ था आपको इस तरीके का। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने घर जाके याद किया था, इल्ला ये कि उनको पहले भी आता है। शायद आप में से बहुत सारों ने ये सोचा होगा क्या आता ऐसे ही, लेकिन आप वो भूल गए कि आपके ऊपर एक अमानत डाली गई थी। हर दिन का सबक आपने 15 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद 3 बार करेंगे तो 5 दफ़ा दिन में, या आपकी मर्जी है। याद रखिए कभी अकल ना इस्तेमाल करें। जो इल्म लेने आते हैं ना वो अकल को घर छोड़कर आते हैं, क्योंकि शैतान ने अकल इस्तेमाल की थी। अना खैरु मिन्हु, मैं आदम से अच्छा हूँ। तो जो तालिब इल्म अपनी बहुत ज़्यादा अकल इस्तेमाल करते हैं ना, या तो वो तालिब इल्म ही नहीं भी रहते, या रहते भी हैं ना तो वो नहीं बनते, वो हीरे और जौहर नहीं उनमें से निकलते जो के निकल सकते हैं। तो समाव अतात इल्म का एक अदब है। इंशाल्लाह 15वें पारे में आप पढ़ेंगे जब मूसा और खिजर का किस्सा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का नाम काट दिया था खिजर ने, क्योंकि वो उनकी बात पे सब्र नहीं कर सके। इन्ना कलन तस्तती माइया सब्रा। तो बहरहाल ये एक छोटा सा रिमाइंडर था। आज के बाद जब भी कोई बात जहां आपको कही जाए ना कि ये होमवर्क है या ये आपने करना है, फिर आपको आता है नहीं आता, आपको ज़रूरत है नहीं, फ़ायदा है नहीं, आपने इस हुक्म पे अमल करने के लिए करना है। और क्या ऐसे छोटे छोटे काम मिलने चाहिए हम सबको? बिल्कुल मिलने चाहिए। आप देखिए कि हाउस जॉब नहीं होती ना तो डॉक्टर को सर्टिफिकेट ही नहीं पूरा मिलता। तो ये जो होमवर्क होता है ना, ये हाउस जॉब होता है, ठीक है? तो अब आप मेरे साथ याद करेंगे। मैं अब बिल्कुल बेनियाज हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे कोई देख रहा है, आई डोंट माइंड। आप सुने मुझे ना सुने, इसी तरह आप खुद भी याद करें। एक एक लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे। इया सिर्फ, इया सिर्फ, इया सिर्फ, का तेरी ही, का तेरी ही, का तेरी ही, इया का सिर्फ तेरी ही। आपकी भी आवाज़ें आनी चाहिए मेरे साथ। इया का सिर्फ तेरी ही, इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, इया का नाबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, इया का नाबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, इया का नाबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, वा और वा और वा और वा और, इया का सिर्फ तेरी ही, इया का सिर्फ तेरी ही, इया का सिर्फ तेरी ही, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वा और, इया का सिर्फ तुझसे ही, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इहदीना दिखा हमको, इहदीना दिखा हमको, इहदीना दिखा हमको, इहदीना दिखा हमको, अस्सिराता रास्ता, अस्सिराता रास्ता, अस्सिराता रास्ता, अस्सिराता रास्ता, अल-मुस्तकीम सीधा, अल-मुस्तकीम सीधा, अस्सिराता रास्ता, अल-मुस्तकीम सीधा, इहदीना दिखा हमको, अस्सिरातल मुस्तकीम रास्ता सीधा, सिराता रास्ता, सिराता रास्ता, सिराता रास्ता, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना लोगों का, अनमता इनाम किया तूने, अनमता इनाम फरमाया तूने, अला ऊपर हम उनके, अला ऊपर हम उनके, अला ऊपर हम उनके, अला ऊपर हम उनके, अलैहिम ऊपर उनके, अलैहिम ऊपर उनके, अलैहिम ऊपर उनके, सिराता रास्ता, लजीना उन लोगों का, नमता इनाम फरमाया तूने, अलैहिम ऊपर उनके, गैरा ना के, गैरा नहीं, गैरा नहीं, अल मगदूबी गदब किया गया, अल मगदूबी गदब किया गया, अलैहिम ऊपर उनके, अलैहिम ऊपर उनके, वह और ला ना अद्दालीन गुमराहों का, वह और ला नहीं अद्दालीन गुमराहों का, गैरी ना के मखदूबी गदब किया गया, अलैहिम ऊपर उनके, वा और ला ना के अद्दालीन गुमराहों का, आमीन ऐसा ही हो, आमीन ऐसा ही हो। अब देखिए किस तरह से अगर आपने घर में इसको जाके याद कर लिया कल आपको बताया था कि याद करने के बाद पहले पेपर पे घर में यूज पेपर और बहुत सारे मेल में जंग पेपर्स आते हैं और बस वह बहुत अच्छे मोटे पेपर्स के होते हैं। अगर आप किसी एक कागज़ को घर में जो आपके आता है इस तरह की स्ट्रिप्स काट लें। मैंने अपने पास एक पेपर था जिसमें प्रिंटिंग पेपर था तो एक दफ़ा वो लंबाई में ज़्यादा आ गया था जो उसमें है तो उसको काट के इन्होंने ना स्ट्रिप्स रखी थी तो वो मेरे बहुत काम आई। इस तरह की स्ट्रिप्स काट के अब बस इस पे मैं लिखूंगी। अब जो मैंने अभी पढ़ा ना आपके साथ इया, अब मैं अरबी ना लिखूँ, मेरा दिल है तो मैं लिख लूँ क्योंकि अरबी लिखना भी बहुत बड़ी एक स्किल है जो आपने इंशाल्लाह सीखनी है। तो मैं लिखूँगी खास तेरी ही, तेरा ही ना बुदू मैं इबादत करती हूँ, यानी एक एक लफ्ज को इस पे लिख लूंगी। फिर उसको मैं अपने पारे से मैच करूंगी कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है, अगर कोई ठीक नहीं था तो बस उसको अब याद करूंगी। अब आज आपको मैं एक नया स्टेप बताने लगी हूँ, बड़े गौर से सब सुने, ये आज से सुना होगा तो बाद में आप इसको दुआएं देंगे और अगर आज इसको सुनकर आपने इस पे अमल ना किया तो बाद में आप खुद को सलवातें सुनाएंगे। आपने क्या करना है, आपकी वर्कबुक आपको इधर मिली होंगी, उसका तरीका क्या होता है, कोर्स आप ऊपर नाम वगैरह सब लिख लें जो भी आपका इसमें नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें खाली जगह है, मसलन ये सूरत अल फातिहा का पेज है, ठीक है, आपने इसके नीचे नीचे खुद अपने हाथ से लिखना है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ अरबी दिख रही है, आपने इस पे कैसे लिखना है ये बहुत गौर से सुनिएगा। आपने याद कर लिया अपना लेसन, आपका रोज का रोज किया होगा, मैंने आज इसलिए इंट्रोड्यूस कराया कि आप यूज टू हो जाएं। डेली लेसन आपका जो भी यहाँ होगा, अब आपने कच्चा पक्का याद कर लिया, फिर कच्ची कॉपी पे लिख लिया, व्हाटएवर, अब आपको शरह सदर के मुझे आता है, वो पारा बंद, बिल्कुल बंद, देख के नहीं लिखना। अब आप इधर लिखेंगे बिस्मी सात नाम अल्लाह अल्लाह रहमान रहीम, लिख दीजिए अल तमाम हमदो तारीफें, हर लफ्ज के नीचे लिखे, आगे ना जाए, ली वास्ते अल्लाह ही अल्लाह रब्बी रब आलमीन, ये आप इसके नीचे इसको अपने हाथ से लिख लें। आपकी मर्जी है कच्ची पेंसिल से लिखें, मैं रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप कच्ची पेंसिल से लिखें शुरू के पारा कम से कम, वजह कि आपको भी गलतियां हो सकती हैं और एक दफा रंग भरी या पेन से लिखा होगा तो फिर मिटाना मुश्किल है। खुद पारा खोलेंगे बाद में लिखने के बाद, ये आपका अपना अल्लाह ताला के साथ है, देख के लिखेंगे तो किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा, आपको ही होगा। खोल के देखें पूरा पढ़ा, ये ठीक है ये नहीं, जो लफ्ज़ आपको लगा कि गलत है दोबारा उस स्ट्रिप पे वो लफ्ज़ खाली लिख लें, छोटी छोटी पर्ची पे कि ये लफ्ज़ अभी कच्चा है, उसको याद करें, इधर मिटा दें उसको जो आपकी गलती है, दोबारा याद करके फिर दोबारा अपनी मिस्टेक्स को मेक करना है, ठीक है। पूरे हफ्ते के चार सबक या पाँच सबक या छः सबक जितने भी होंगे हर दिन जाके लिखेंगे तो बोझ नहीं होगा और बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप उस मकसद से जम जाएं जिसके लिए आप सीखने लगे हैं। बात वाज़े, बात समझ आ गई तर्जमे की, इसमें नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, ये चीज़ आपकी एंड पे काउंट होगी और आपको इससे इतना फ़ायदा होना है। ये जो ड्रीम है ना हम सबका कि हम अरबी सुने और उर्दू आ जाए, उर्दू सुने अरबी आ जाए, कल भी एक किसी आउटसाइड किसी और कंट्री की सिस्टर हैं, रो रो के उनका यही मैसेज होते हैं कि जब मैं मस्जिद में गई तो इमाम साहब तिलावत कर रहे थे तो मुझे समझ आ रही थी तो मैं रोने लगी, तो मैंने आपको दुआएँ देनी शुरू कर दी तो मुझे बस ही नहीं रहा कि मैं तो गूंगो बहरों की तरह सुनती थी, अब मुझे समझ आ रहा है। तो मैंने कहा ये दूसरों को बता दें जो नहीं इस पे मेहनत करना चाहते। हम इसे बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं, हेड्स रखते हैं तफसीर की, बस हमें तफसीर सुना दें, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर चलते फिरते उठते बैठते सुनते तो हो सकता है आपके कान ही सिर्फ सुन रहे हैं, आपका दिल नहीं सुन रहा होता। ये तर्जुमा याद करना आपका वो कनेक्शन डिवेलप करेगा जो भी हम सुनने वाले हैं। बहुत इमोशनल आयतें हैं आज की, आपने अगर हजारों बार भी सूरह फातिहा अभी तक जिंदगी में पढ़ी है ना, लेकिन ये अल्फाज का खेल था, अब आपका इसमें अल्लाह से जज्बाती ताल्लुक होगा, ठीक है। तो लफ्जी तर्जमा ही आपको इस काबिल करेगा, आपको मसले फिक्र ख़त्म, गम ख़त्म, टाइम की किल्लत होती है। वरना मैं एक शेयरिंग सुनाऊँ, एक सिस्टर की थी रात को, वो कहती हैं कि मैं कोर्स से पहले मेरे हर वक्त गम थे, क्या हेल्थ इश्यूज, कमर में दर्द क्यों है, सर में दर्द अब क्यों है, मैं वीक हूँ और घर के काम भी नहीं करती थी, यानी वो सारी, ये रात को मैंने सुबह सुनी है, उन्होंने रात को भेजी हुई थी, तो उसमें वो कहती हर वक्त मैं उलझी रहती थी और आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम द मोस्ट निगलेक्टेड पर्सन ऑफ माई फैमिली, ऐसा से कमतरी था कि मैं अपने खानदान की सबसे निगलेक्टेड लड़की हूँ। अब वो कहती है मेरा गम क्या, क्लास कब हो रही है, उस्ताजा का लाइव पे आ तो नहीं गया, मिक्सलर का लिंक तो नहीं आ गया, अच्छा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप था उसमें क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके इंतजाम क्या करने, कहती मुझे भूल ही गया कि मैं कभी हर वक्त बीमार रहती थी। बड़ा गम लगा लेंगे ना, छोटे गम आसान हो जाएंगे। और ये गम है, मिसाल है कि अब ये एक नया गम हम पाल रहे हैं, और मैं आपको इस बात का इकरार करूंगी कि लफ्जी तर्जमा याद करना हमारा कल्चरल इशू नहीं है अभी तक। अब बन जाए तो अल्लाह बना दे। खत्म कुरान का नाम आप सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मारूफ है हमारे कल्चर में। कुरान खानी का लफ्ज़ कहें, किसी को सेकंड थॉट देनी नहीं पड़ेगी। दरूद शरीफ का ख़त्म कह दीजिए, मिलाद कह दीजिए, सबको पता है। लेकिन लफ्जी तर्जमा इसकी वजह क्या है, ज़रूर और समझ ही कोई नहीं आती। अब देखें ना, ईया खास का तेरी नस्ताइन हम मदद चाह, समझ ही नहीं आती है। तो बच्चों वाले तितबित कर रहे हैं, ये तितबित ही आपको बाद में खुल के बात करने के काबिल करेगी। तो एक जुमला जो हर क्लास के साथियों से कहती हूँ, आपको भी कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में मुश्किल लगती हैं ना हमें, मसलन इसमें एक चीज़ है जो हम अभी देखते हैं, रूट वर्ड्स या कोई और ग्रामेटिकल बातें या थोड़ी सी मैंने कोई बोझल बातें कर दी, जब कोई मुश्किल चीज़ आपके सामने आए तो फौरन एक जुमला मेरा लिख लें अपने वर्कबुक या अपने नोटबुक के शुरू में कि बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में मुश्किल लगती हैं वो बाद की आसानियों का जरिया बनती हैं। आपके बच्चे को बहुत मुश्किल लगा था शुरू में एबीसी याद करना, सुबह सुबह उठ के बाथरूम से उठ निकलना और स्कूल जाना, सर्दी में जैकेट टोपी पहनना, लेकिन आज आपको पता है कि उसी ने काबिल कर दिया, आपको भी तो बच्चे को भी कर देगा। इसी आस पे तो हम शुरू से सफ़र शुरू करते हैं ना अपने बच्चों का। तो लिहाजा आपके मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मदद करें। अब चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। पारा सामने रखें, आज अगर आपके पास रेड या ग्रीन या पर्पल कोई अनयूजुअल कलर का पेन है ना, वो हाथ में पकड़ लें। बगैर तफसीलात बोले मैं सिर्फ आपके साथ रूट वर्ड बोलूँगी, ठीक है? आज के सबक में से जो रूट वर्ड्स हैं वो मैं बोलूँगी, आप अपने इसी पारे पे लिख सकती हैं। दूसरी कुछ साथियों की चॉइस हो ना, तो ये जो वर्कबुक आप देखी है आपने, ये दोबारा देखें, इसके ये बॉर्डर्स खाली हैं, ये बॉर्डर्स इस पे भी लोग लिखते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि ये वर्कबुक फिर टू मच यूज होने की वजह से कुछ पारों के बाद हिलने जुलने लगेगी। तो आप इस वक्त जहां मर्जी लिखें, कॉपियों पे लिख रहे हैं नोट्स पे, लेकिन जिस पारे से आपने इंशाल्लाह तर्जुमा याद करना है, कल टेस्ट की तैयारी करनी है, ग्रुपिंग में सुनाना है, उस पर लिखा होगा ना, गैर मखसूस तरीके से वो आपकी आंखों के अंदर आ जाएगा, आपको रूट वर्ड्स मुश्किल नहीं लगेंगे। और रूट वर्ड्स की थोड़ी सी बात की है, बाकी बातें वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है? आप कह ले जैसे बीज होता है जिसमें से एक दरख्त फूटता है, इसी तरह मादा या रूट वर्ड है जिसमें से लफ्ज़ फूटते हैं, ठीक है? तो ई या का से शुरू करके हम आगे चलते हैं। मैं बोलूँगी लफ्ज़ और उसका रूट वर्ड बोलूँगी, कोशिश करूँगी बीच में जुमले ना बोलूँ ताकि आपको लिखने में सहूलत हो। चलिए, ई या, हमज़ा यानी अलिफ, या जिसका मैं नहीं बोल रही उसको इग्नोर कर दें, का मतलब अलग है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। नाबुदु, ऐन बा दाल। नस्ताइन, ऐन वाओ नून। इहदीना, हा दाल या। असिराता, स्वाद रो तो। अलमुस्तकीम, قاف واو ميم. أنعمت نون عين ميم. المغضوب غين ضاد با. الضالين ضاد لام لام. ठीक है, तो ये चंद रूट वर्ड्स हैं, ये बहुत आसान है, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जानने लग जाएंगे। अब देखिए कि इसमें से चंद लफ्ज अगर आप देखें जो आपको नए लग रहे हैं लेकिन आप इसको समझना पहचानना चाह रहे हैं, तो उर्दू जुबान में मिलते हुए लफ्ज आप कुछ ना कुछ ला सकते हैं। बस आप देखिए कि या का को छोड़ दीजिए, ना बुदू में जो लफ्ज है इससे मिलते हुए लफ्ज उर्दू के बोलें, सब मिलके बोलें, इबादत, आबिदा, माबूद, सब बोलें, अब सबको आती उर्दू, इबादत खाना, माबूद और अब्द, आबिद, ठीक है? तो ये एक ही खानदान है, इन सब में ऐन बा दाल मुश्तरक है। फिर या का नस्ताइन, ये लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है आज के सबक में, लेकिन कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। नस्ताइन के लफ्ज़ को ढूंढिए जरा, इससे मिलते हुए लफ्ज़ ढूंढिए जरा, नून अलग कर दें, बाकी चीज़ों को आप देख लीजिए। इस्तेआनत, तामुन, तावुन करो, मुआविन, एआनत, लोग चंदे को एआनत भी बस दफा बोलते हैं, मुआवनत, پلس معین بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاونت، اعانت، تو اس میں آن لفظ چھپا ہوا ہے، اس پہ بہت خوبصورت باتیں آج انشاءاللہ آپ جانیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلیے نستعین کے بعد اہدینا، اہدینا کا لفظ اردو میں بولیے ذرا، ہدایت، اہدینا سے ملتا ہوا لفظ بولیے، ہادی، ہادیہ، محتد، امام مہدی، ہدیہ، اور بولیے شابش، اللہ کا نام الہادی، ٹھیک ہے؟ یہ سب ایک آپ کو آتے ہیں. سراتا کے لفظ کبھی بولے آپ نے اردو میں؟ سراتا، پل سرات، شاباش، پل سرات ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، مستقیم کا لفظ اردو میں کبھی بولے؟ استقامت، قیامت، قوم کا لفظ اس میں روٹ میں آتا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، 80% اردو اور عربی کے لفظ کامن ہے، ہمیں آپ کو صرف 20% یاد کرنے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں اردو بولنے والے کہ ان کے لیے ترجمہ یاد بہت کرنا آسان ہے. میں نے خود بچیوں کو دیکھا ہے، میں نے خود بھی انگلش میں کیا تھا، آپ کو شاید اندازہ، میں نے ایک کورس انگلش میں بھی اس لیے کیا تھا کہ میں دیکھوں کہ مجھے ترجمہ کیسے یاد ہوتا ہے، ترجمہ یاد کرنے کے شوق میں. تو آج بھی انگلش پہ بھی الحمدللہ زبان چڑھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اردو میں آسان ہے. اردو میں مستقیم سے فوراً قیامت، استقامت آ گیا. اب انگلش والے کیسے کہیں بی فارم، اب بھول، ان کو تو ربط ہی نہیں ملتا نا. تو لہٰذا اردو کا بینیفٹ لیں، آپ کے میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی. پھر آپ دیکھیے صراط الذین کے بعد انمتا کا لفظ اردو میں بولیں، انعام اور نعمت، منعم اور جی نہیں، نعمت سے انعام، کیٹلز جو پائے، سورت الانعام بھی ہے، ہلکی ہلکی چال چلتے ہیں، اور انعام ہوتے سافٹلی کسی چیز کو کوئی چیز دینا. آپ دیکھیں کہ کبھی بھینس کو چلتے دیکھیں، یوں چلتی ہے، ایسے ڈھیلی ڈھیلی چلتی ہے، آواز بھی نہیں آتی بھینس کے چلنے کی. گائے کو دیکھ لیجئے، تو انعام ہوتے ہیں جن کی چال بڑی نرم نرم ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دیکھیے علیہم ہو گیا غیر، یہ غیر کا لفظ کبھی بولا؟ میں نے تو ناروے میں آ کے بہت سنا ہے، ہم نے غیروں میں نہیں شادی کرنی، ہمیں اپنی بلادری کا چاہیے. ہیں تو یہ غیر وہی ہے، ایکسکلوڈڈ. ہم انکلوڈ ہی نہیں کرتے ان بہوؤں کو ساری زندگی جو باہر سے آ جاتی ہیں بیچاری، وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. بہرحال تو غیر، غیر جو اپنا نہ ہو، اپنا نہ ہو یعنی بیگانہ. المغضوب کے لفظ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ غضب، غاضب، اور بولے مغضوب ادھر آ گیا نا. دماغ کو استعمال کریں، آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت کچھ نکلے گا. غضب الہی ٹوٹا ان پر، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دیکھیے علیہ ولد دوالین، دوالین کا لفظ اردو میں بولتے ہیں دلل، دلال، دلال مبین، ٹھیک ہے؟ تو بس اتنا بھی یاد رکھیے کہ عربی اور اردو بہت ملتی جلتی بہنیں ہی ہیں، ہم تھوڑا سا وقت لگائیں گے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب سنتے ہیں تلاوت، اور تلاوت سننے کے دوران آپ نے سوچنا ہے کہ آج کی آیتوں میں بولا کیا نئی بات ہے، اب ہم پھر سورہ فاتحہ بھی لگے ہوئے ہیں ابھی تک. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا مجھے ایک اور ویک لگانا چاہیے، لیکن پھر آپ عادی نہ ہو جائیں اتنا سلو پڑھنے کے. تو خزانے ہیں ان لفظوں کے. آئیے شروع سے اس کی تلاوت سنتے، اور آپ ان کو دو مختلف آوازوں میں سنوائیں، ایک ذرا سی سلو اور ایک فاسٹ، اور آپ لوگ بالکل اس کو سننے کے دوران ریڈی ہو جائیں کہ اب آپ اس کے اندر سے انشاءاللہ بہت کچھ اور لیں گے.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کچھ جذباتی تعلق بن رہے بنائیں، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کچھ چیزیں نا پوز کرنی پڑتی ہیں. شروع میں آپ جھوٹا جھوٹا کہتے ہیں آئی لو یو, پھر بار بار کہیں تو پھر واقعی فیلنگ آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ویسے تو یا کا نام بدو سے شروع کرنا ہے, لیکن پیچھے سے اس کا چونکہ ربط ہے تو پچھلی تین آیتوں کو ساتھ جوڑتے ہوئے انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس دفعہ سوالی انداز سوال جواب کریں گے, لیکن جب پورا سبق پورا ہوگا تو میں اس کو ایک سیشن میں اس کی سمری کراؤں گی. تو کچھ چیزیں ہم جو ابھی نہیں بھی کر پائیں گے وہ ہم بعد میں اس کی سمری میں دیکھیں گے. اب چلتے ہیں ہم اس کی تفسیر پہ.